आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी ने मगरबी एशिया महाजाराई के तनाजुर में पैदा होने वाले हालात का जायजा लिया। वजीर आजम ने मोदी ने इसके नामुआफिक असरात से लोगों को महफूज रखने पर जोर दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ने उसके बिजली घरों पर हमला किया तो आबनाए हुरमुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। आसाम, केरलम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। सरकार आज अहम और कलीदी मादनियात के ब्लॉकों के लिए नीलामी का सातवां मरहला शुरू कर रही है। और छत्तीसगढ़ में बुध को शुरू होने वाले खेलो इंडिया कबायली गेम्स के मुकाबले रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि मगरबी एशिया की महाजाराई एक लगातार उभरने वाली सूरत हाल है और पूरी दुनिया इससे किसी न किसी शक्ल में मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में लड़ाई के असरात से लोगों को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए। जनाब मोदी ने सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मगरबी एशिया में जारी महाजाराई के तनाजुर में हालात का जायजा लेने और इकदामात के सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनगार से।
इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने आलमी सूरतेहाल और अब तक किए गए इकदामात नीज उन मंसूबों के बारे में तफसीली जानकारी पेश की जो सभी मुतालिका वजारतें और महकमे तैयार कर रहे हैं। वजीर आजम के दफ्तर के बयान के मुताबिक इस मीटिंग में ज़राअत, कीमियावी खाद, खुराक की यकीनी फराहमी, पेट्रोलियम जैसे शोबों और दीगर मुतासरा शोबों में इसके मुमकिन असरात और इनसे निमटने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में खुराक, तवानाई और ईंधन की यकीनी फराहमी समेत आम आदमी की जरूरियात की तकमील के लिए इन अशिया की दस्तियाबी का तफसीली जायजा भी लिया गया। इसके अलावा लाजमी अशिया की लगातार दस्तियाबी को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती इकदामात पर भी गौर किया गया। इस मीटिंग में केमिकल्स, दवा साज कंपनियों, पेट्रोकेमिकल्स और दीगर सनअती शोबों को दरकार दरामदात को दीगर जराए से हासिल करने की कई इकदामात पर भी तबादले ख्याल हुआ। वजीर आजम के दफ्तर ने बताया है कि मुख्तलिफ वजारतों ने कई इकदामात तजवीज किए हैं। सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरा करके आने वाले दिनों में इन पर अमल दरामद किया जाएगा। नई दिल्ली से सामर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका उसके बिजली घरों पर हमला करता है तो वो आबनाए हुरमुज को पूरी तरह बंद कर देगा। एक बयान में ईरान की सिपाह पासदारान इंकलाब IRGC ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसे उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि ईरान के तबाहशुदा बिजली घरों की दोबारा तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती। IRGC का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान 24 घंटे के अंदर आबनाए हुरमुज को नहीं खोलता है तो अमरीका ईरान के मुतअद्दिद बिजली घरों पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा, जिसका आगाज सबसे बड़े बिजली घर से किया जाएगा। इसके अलावा IRGC ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 74वें सिलसिले का ऐलान किया है, जिसमें भारी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के शहरों में फौजी और सिक्योरिटी मराकज को निशाना बनाया गया। इस दौरान एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज मगरबी एशिया के लिए और वहां से कुल 30 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाजें चलाएंगी। ताहम कई रूट्स पर फजाई खिदमात महदूद हैं। दोनों एयरलाइंस जद्दा के लिए अपनी परवाजें जारी रखेंगी, जहां भारत और सऊदी अरब के शहर जद्दा के दरमियान कुल 10 परवाजें चलाई जाएंगी। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी की परवाज भी चलाएगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मैंगलुरु से फजाई खिदमात फराहम करेगी। आसाम, केरलम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। मजकूरा दोनों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में एक ही मरहले में अगले महीने की 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। तमिलनाडु में एक ही मरहले में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो मरहले में पोलिंग होगी। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 30 तारीख को जारी किया जाएगा। मगरबी बंगाल के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को जारी किया जाएगा। चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। केरलम असेंबली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
उम्मीदवार आज सपहर 3 बजे तक केरलम असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात दाखिल करने का अमल दिन में 11 बजे शुरू होगा। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार इस महीने की 26 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। केरलम में अब तक 140 हलकों में कुल 341 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि इंतखाबी कमीशन वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी SIR अमल के तहत पहली जिमनी वोटर फहरिस्त आज जारी करेगा। इस फहरिस्त में उन वोटरों के नाम शामिल होंगे जिनके दस्तावेजात मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हैं और जो अब तक जांच के मरहले में जेर इल्तवा थे। इंतखाबी कमीशन के जराए ने कहा है कि 27 लाख जेर इल्तवा वोटर रिकॉर्ड्स को निपटा दिया गया है, जबकि रोजाना तकरीबन 2 लाख नामों पर कार्रवाई की जा रही है। फहरिस्त जारी होने के बाद अगर राय दहिंदगान को कोई एतराज हो तो वो ECI नेट ऐप या कमीशन की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या जैली डिवीजनल दफातर में ऑफलाइन अपील कर सकते हैं। फहरिस्त की इशात के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत जारी की है कि वह हजूम पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। इस हिदायत की कॉपियां रियासती पुलिस सरबराह और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 23 जिलों में अपील के लिए 19 ट्राइब्यूनल कायम किए गए हैं, जिनमें हाई कोर्ट के साबिक जज तैनात हैं। जिमनी फहरिस्त में जिन वोटरों के नाम शामिल नहीं होंगे वो इन ट्राइब्यूनल के जरिए अपील कर सकते हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में कॉरपोरेट कवानीन तरमीम बिल 2026 पेश करेंगी। इसके अलावा ऐवान के आज के कामकाज में माली बिल 2026 पर गौर खौज और इसकी मंजूरी भी शामिल है। इधर राज्यसभा में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज से मुतालिक उमूमी इंतजामिया बिल 2026 पेश करेंगे। इसके अलावा अखराजात से मुतालिक नंबर 2 बिल 2026 भी गौर खौज और मंजूरी के लिए ऐवान के आज के कामकाज में शामिल है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोयले और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज अहम और कलीदी मादनियाती ब्लॉकों की नीलामी के 7वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों को पट्टे पर देने और जामे लाइसेंस के तहत मुख्तलिफ रियासतों में इस मरहले में 19 ब्लॉकों की नीलामी होगी। ये ब्लॉक मुख्तलिफ शोबों के लिए जरूरी मादनियात पर मुश्तमिल होंगे। इनमें माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजियां, कीमियावी खाद और कलीदी अहमियत की हामिल सनअतें शामिल हैं। कानून के महकमे की वजारत के मुताबिक ये नीलामी 2 मरहले वाले शफाफ अमल के जरिए ऑनलाइन की जाएगी। आज सरकर्दा मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उन्हें बरतानवी हुक्मरानों ने 1931 में आज के ही दिन लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। इन तीन इनकलाब पसंद मुजाहिदीन आज़ादी पर 17 दिसंबर 1928 को एक बरतानवी पुलिस अफसर पर गोली चलाने में उनके शामिल होने की बिना पर मुकदमा चलाया गया और फिर मौत की सजा सुनाई गई। पेश एक रिपोर्ट।
अंग्रेज़ों ने मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद खुफिया तरीके से उनकी लाशें फिरोजपुर के हुसैनीवाला में दरियाए सतलज के किनारे गैर रस्मी तरीके से सुपुर्द आतिश कर दी। यहां शहीदों की कौमी यादगार किसी के सामने न झुकने वाले इनकलाबी जज्बे की अक्कासी करती है। पंजाब में सरहदी सलामती फोर्स ने कल तीनों की अजीम कुर्बानियों के एहतराम में अपनी डायमंड जुबली तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक अनोखी पहल करते हुए फिरोजपुर हुसैनीवाला मैराथन का एहतमाम किया। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने लोगों को फिरोजपुर कैंट से हुसैनीवाला तक लाने और ले जाने के लिए आज 6 जोड़ी खसूसी शहीदी मेला ट्रेनें चलाई हैं। لوگ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار پر پہنچ رہے ہیں۔ ملک کے ان سپوتوں کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے شہید بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں کھٹکڑ کلاں میں ایک ریاستی سطح کا پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
وزیر اعظم نے مودی نے آج مجاہدین آزادی بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھ دیو کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ملک کی خاطر ان کی شہادت کی یاد لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ برقرار رہے گی۔ ادھر لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان دلیر محب وطن مجاہدین آزادی نے ہمت، بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی ایک ایسی مثال پیش کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج سکھ مذہب کے چھٹے گرو گرو ہرگوبند صاحب جی کی جیوتی جوت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ گرو ہرگوبند صاحب جی نے سنت سپاہی کی روایت قائم کی اور اس طرح سکھ مذہب کو انسانیت کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور وسیلہ بنایا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سری اکال تخت صاحب کی بنیاد قائم کر کے گرو ہرگوبند صاحب جی نے سکھ مذہب کو مستحکم کیا اور ہندو سکھ اتحاد کے پیغام کی تشہیر کی۔ پیپلز پدم اور آکاشوانی سلسلے کے تحت ہم نے چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن ڈاکٹر بدھری تاتی سے بات کی، جنہیں پدم شری سے سرفراز کیا جائے گا۔
سب سے پہلے تو میرے من میں آیا کہ ہم ان کو آتم نربھر کرنا ہے تو ان کو ساکشرتا بنانا ہے، شکشا کے ساتھ ساتھ سنسکار بھی دینا ہے، جاگروکتا لانا ہے۔ بینک کو کبھی نہیں جانتے تھے، اب وہاں تک ان کو لے جا کے 10-12 ہزار کھاتا کھولے، اس سمے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، 50 روپے میں ہم نے کھاتا کھولے۔ ہزاروں بہنیں ہنوگیتا کبھی شکشا نہیں پائے، اسکول کو پتا نہیں ہے، ایسی بہنوں کے بیچ میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ اسی سمے سے میرا 84 سے من میں آیا ہے۔
ان کے ساتھ یہ گفتگو آپ آج صبح 9:10 پر 100.1 آکاشوانی گولڈ پر سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہوگا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ساحلی آندھرا پردیش، مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، رائل سیما، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھی کل تک اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ ادھر کیرلا، ماہے، کونکن اور گوا میں موسم گرم رہنے اور ہوا میں نمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ چھتیس گڑھ 25 مارچ سے 3 اپریل تک کھیلو انڈیا قبائلی گیمز کے آئی ٹی جی 2026 کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کھیل کود کے یہ مقابلے 3 شہروں رائے پور، جگدل پور اور سرگوجا میں منعقد کیے جائیں گے۔ 2300 ایتھلیٹ سمیت 6000 سے زیادہ کھلاڑی اس میں حصہ لیں گے۔ 32% سے زیادہ قبائلی برادریوں کی آبادی مقامی ثقافت، روایات اور کھیلوں میں مہارت کی زندہ وراثت کے ساتھ چھتیس گڑھ نہ صرف اس کا میزبان ہے بلکہ وہ ان کھیلوں کا فطری سرچشمہ بھی ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
شکریہ عمر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے مشرق وسطی کے بحران پر وزیر اعظم مودی کی اعلی سطحی میٹنگ کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، اعلی سطحی میٹنگ میں پیٹرولیم مصنوعات، گیس، توانائی اور کھاد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے پر زور۔ اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے، پانی کے عالمی دن پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پانی کے تحفظ پر زور۔ الیکشن کمیشن کے انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر بہتر سہولیات کی ہدایت، اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ریاستوں کو 20% سے زیادہ گیس سپلائی بڑھانے کی ہدایت دی، اس خبر کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ دلی حکومت کی پیریفرل ایکسپریس وے کے لیے 3,700 کروڑ روپے کی منظوری، یہ خبر بھی سبھی اخبار میں ہے۔ روس سے خام تیل اور امریکہ سے رسوئی گیس کے 2 جہاز منگلور پہنچنے کی خبر کو اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سیکیورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مغربی ایشیا مہازارائی کے تناظر میں پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مودی نے اس کے ناموافق اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے بجلی گھروں پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز کو پوری طرح بند کر دیا جائے گا۔ آسام، کیرالا اور پودوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ سرکار آج اہم اور کلیدی معدنیات کے بلاکوں کے لیے نیلامی کا ساتواں مرحلہ شروع کر رہی ہے اور چھتیس گڑھ میں بدھ کو شروع ہونے والے کھیلو انڈیا قبائلی گیمز کے مقابلے رائے پور، جگدل پور اور سرگوجا میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔